लेकिन सादिया, तैमूर खड़े होकर सामने से सादिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी इस क्वालिटी के बारे में मुझे पता ही नहीं था। सादिया ने ठंडे लहजे में कहा, कौन सी क्वालिटी? जैसे रेहान की बात का तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ा था। अगर तुम संभालना चाहो तो बहुत कुछ संभाल सकते हो, रेहान ने कहा था। आपके लिए तो मैं हमेशा से ही ऐसी थी, सादिया ने धीरे से कहा। लेकिन रेहान बोला, ऐसा तुमने पहले कभी नहीं किया। इससे पहले आपको इतनी तकलीफ भी तो नहीं हुई, सादिया ने उसे देखते हुए कहा। वो उसकी नूर के प्रति दीवानगी को साफ देख रही थी। रेहान चाहे ऐसे दिखा रहा था कि कोई उसे समझ नहीं सकता, मगर सादिया की नज़रों से कुछ भी छिपा नहीं था। कैसी, किस तकलीफ की बात कर रही हो? उसने थोड़ा हैरान होकर पूछा। नूर की वजह से, मैं उसी तकलीफ की बात कर रही हूँ, रेहान ने गौर से सादिया के चेहरे की तरफ देखा। नूर? शायद वो उसके चेहरे से समझना चाहता था कि उसका मतलब क्या है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, रेहान ने कहा। मुझे बहुत तकलीफ दी है, मेरा मान तोड़ा है उसने। कैसा मान? सादिया ने कहा। गुरूर। सादिया का मतलब था कि बहुत से लोगों को ठुकरा कर नूर चली गई थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा और सादिया ने बात संभालते हुए कहा, आपको तो उसकी शराफत पर बड़ा यकीन था, है ना? रेहान कन्फ्यूज होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर जल्दी से संभल कर बोला, मैं भी यही समझता था। असल में वो आपको उंगलियों पर नचाना चाहती थी, जैसे अरमान और फैजान के साथ उसका प्यार था, वैसे ही आपके साथ भी, मगर आप वैसे नहीं थे। सादिया ने जानबूझकर ये बातें कही थीं। कहीं ना कहीं उसके अपने दर्द की झलक भी थी, क्योंकि उसने भी अपना शौहर खो दिया था। सच तो ये था कि रेहान उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं था। शायद तुम सही कह रहे हो, रेहान ने धीमे से कहा। शायद नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, सादिया ने उसके चेहरे पर नजरें टिकाते हुए जवाब दिया। सादिया ने फूल उठाए और उन्हें फूलदान में सजाने लगी, जबकि रेहान अब भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सादिया हमदर्दी के बहाने उस पर तंज कसकर जा चुकी थी। नूर का नाम याद आते ही रेहान के अंदर गुस्सा उभर आया। वो उसे पाना चाहता था, मगर अब तक उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई थी। उधर साकीत घर पहुंच चुका था। उसका दिमाग उसी आदमी के इर्द गिर्द घूम रहा था जो नूर का पीछा कर रहा था। उसे इकबाल की घबराई हुई आवाज और उसके दिए जवाब याद आ रहे थे, जो उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगे थे। उस वक्त तो साकेत ने बात को नजरअंदाज कर दिया था। फैजान और रेहान की तस्वीरें उसे आदमी को दिखाई थीं, लेकिन अब उसका दिमाग साफ कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। आंगन में चारपाई पर लेटा साकेत अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। कहीं मैंने नूर को गलत तो नहीं समझ लिया, उसने खुद से कहा। तभी उसकी माँ उसके पास आकर बैठ गई। नहीं, तुमने नूर को बिल्कुल सही समझा है, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा। आज शकीला आई थी, इसका मतलब नूर के घर की किराएदारनी से था। वो साफ साफ कह रही थी कि पूरे मोहल्ले में नूर की बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अपनी अम्मी की बात सुनकर साकेत चुप हो गया। और हाँ, उसकी माँ ने आगे कहा, तुम्हारे चाचा से बात हुई थी जो दुबई में है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारा वीजा और टिकट दोनों तैयार हैं और वहाँ काम का भी इंतजाम हो चुका है। ये वही मौका था जिसका साकेत काफी समय से इंतजार कर रहा था। अब उसका दुबई जाना तय हो चुका था। साकेत एक झटके से उठ बैठा। वो अपनी अम्मी के पास गया, उनका हाथ पकड़कर बोला, अम्मी एक बार फिर खाला से बात करिए, मैं नूर से निकाह करना चाहता हूँ हर हाल में। उसकी अम्मी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पागल हो गए हो क्या, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ अम्मी, और उसी से निकाह करना चाहता हूँ, साकेत की आवाज में जिद भी थी और सच्चाई भी। खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी, उसकी अम्मी ने सख्त लहजे में कहा। आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। दुबई जाने की तैयारी करो और इन सब बेकार बातों को भूल जाओ, इतना कहकर वो अंदर चली गई। साकेत वहीं आंगन में पड़ी चारपाई पर वापस बैठ गया। उसका चेहरा परेशान था और दिमाग उलझनों से भरा हुआ। उधर जुबैदा बेगम के पास रिदा का फोन आया। तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उससे, उन्होंने नर्म लहजे में रिदा को समझाया और फोन रख दिया। फोन काटकर वो खाने की टेबल पर आकर बैठी जहां अरमान और मीरा पहले से बैठे थे। अरमान, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, सुबह से तुम्हें कॉल कर रही है वो, जुबैदा बेगम ने हल्की नाराजगी से कहा। अच्छा, मुझे फोन कर रही थी, अरमान ने हैरानी से कहा और जेब से मोबाइल निकाला। ओह, ये तो साइलेंट पर था, इसलिए पता नहीं चला, उसने सफाई दी। खैर, जुबैदा बेगम ने बात खत्म करते हुए कहा, तुम उससे बात करो, तुम दोनों की मंगनी होने जा रही है, थोड़ा वक्त साथ में बिताया करो। फिर उन्होंने आगे कहा, और हाँ, मैंने गरीबों को खाना खिलाने का इंतजाम किया है, तुम दोनों शाम को मेरी बताई जगह पर पहुंच जाना। माहिरा ने हल्का सा मुंह बनाया। आपको क्या शौक चढ़ा है ताई अम्मी की तरह, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अरमान बिना कुछ बोले कुर्सी से उठा और वहां से चला गया। वो
समझो बेवकूफ लड़की, जुबैदा बेगम ने सख्ती से कहा, मैं चाहती हूँ कि किसी बहाने से ये दोनों साथ रहें। देख नहीं रही हो, अरमान उसे वक्त ही नहीं दे रहा, फोन तक नहीं उठा रहा। ऐसे रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? मैं चाहती हूँ कि दोनों के बीच समझ बने, अंडरस्टैंडिंग हो। माहिरा ने भौहें से कोड़ ली। मैं उन लोगों जैसी बनना नहीं चाहती हैं जो किसी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, जुबैदा बेगम ने तंज किया। क्या मतलब? माहिरा ने धीमे लेकिन भारी लहजे में पूछा। मतलब साफ है, जुबैदा बेगम ने बिना डरे कहा, वो लोग सादिया की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जुबैदा बेगम हल्का सा मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान ठंडी थी। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी शादी फैजान से उसकी प्रॉपर्टी की वजह से करवाई? उन्होंने गहरी नजर से माहिरा को देखते हुए कहा। सच तो ये है, उनकी आवाज और भी धीमी हो गई। फरीद खान की नजर हमेशा से सादिया के हिस्से पर थी, पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर। माहिरा के चेहरा एकदम उतर गया। ये आपको किसने कहा? अरमान हैरानी से बोला, जो वापस वहीं आया था और उसने सारी बात सुन ली थी। किसी ने नहीं, जुबैदा बेगम ने सीधा जवाब दिया, मैंने अपनी आंखों से वो पेपर्स देखे हैं। अरमान और माहिरा दोनों चौंक गए। कल पूरा काम खत्म हो चुका है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। कल? अरमान के होंठों से बस यही निकला। असल में कल जब जुबैदा बेगम ड्राइवर करीम से फाइल मंगवाकर रेहान के घर के अंदर लेकर गई थी, तभी उनकी नजर उस पूरी फाइल पर पड़ चुकी थी। वो सब कुछ देख चुकी थी, हर कागज, हर साइन। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया, अरमान अब भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे। जुबैदा बेगम की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज उठी, इसीलिए तो ये शादी करवाई गई। माहिरा चुप थी, मगर अरमान के चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। शादी के बाद सब कुछ वैसे भी उनके कब्जे में आ ही गया था, माहिरा ने धीमे से कहा। नहीं, जुबैदा बेगम ने तुरंत उसे रोका, किसी चीज पर कब्जा होना और उसी चीज पर कानूनी हक होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। उनकी बात ने कमरे की हवा को और भारी कर दिया। उन्हें फरीद खान को अपनी भतीजे की प्रॉपर्टी चाहिए थी, सो उन्होंने ये सब प्लान किया। मगर ताया अब्बू, वो तो सादिया से मोहब्बत करते थे, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरमान ने हैरानी से कहा। वो ये सब जानकर काफी हिल गया था। उसकी तो पहले से ही सादिया से नहीं बनती थी, उसे लगता था कि सादिया गलत है, मगर आज उसे समझ आ रहा था कि असल में गलत कौन है। कोई मोहब्बत मोहब्बत नहीं थी, जुबैदा बेगम ने ठंडे लहजे में कहा, उसे अपनी भतीजी से नहीं, उसकी प्रॉपर्टी से मोहब्बत थी। तुम लोगों को ये सब समझ नहीं आएगा। अरमान ने बिना कुछ कहे टेबल से अपना फोन उठाया और वहां से चला गया।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। आपके कमेंट हमें लिखने का हौसला देते हैं।